हम सभी लोग हमेशा की तरह एक साथ इसलिए बैठे हैं कि विचार करें, अपने शेष जीवन को बेहतर बनाने का विचार करें। जिन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाया उनके जीवन पर भी विचार करें। मुझे आचार्य वीर सागर जी महाराज के बारे में विशेष कोई जानकारी तो नहीं है, पर उनकी साधना और उनकी तपस्या आचार्य शांति सागर जी के बाद उन्हीं का नंबर था और उनकी उस परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय आचार्य वीर सागर जी महाराज को जाता है। उनके जीवन का कोई प्रसंग तो मुझे याद आता नहीं है। इतना जरूर है कि आचार्य महाराज ने एक बार सुनाया था कि गृहस्थ जीवन में आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास जब वीर सागर जी महाराज और पाय सागर जी महाराज, ये दोनों महाराज पहुंचे थे, तब उस समय बहुत डिस्कशन हुआ और आचार्य शांति सागर जी महाराज चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज चुपचाप सुनते रहे और फिर उन्होंने इतना ही कहा था, क्योंकि प्रश्न यहां तक आ गया था कि क्या दिगंबर होकर के ही और साधना की जाएगी तो मुक्ति मिलेगी, और ऐसा आपको क्या आपने अपने जीवन में देखा है क्या किसी को मुक्त होते हुए, और आप मुक्त हो ही जाएंगे, आपको ये विश्वास है क्या? ऐसी बहुत सारे प्रश्नों के बीच आचार्य शांति सागर जी महाराज चुपचाप रहे थे और इतना ही जवाब दिया था कि भैया आम का बीज बो तो भले ही आम के फल लगें या ना लगें, पर ये तो तय है कि जब भी लगेंगे आम के ही फल लगेंगे। सो हमने तो अभी उसमें फल नहीं लगे हैं, मुक्ति का फल जब लगेगा सो लगेगा, लेकिन हमें विश्वास है कि जो संसार के प्रपंच से मुक्त होता है और अपना जीवन संसार के प्रपंच से मुक्त होकर के जीता है उसी के जीवन में मुक्ति का फल लगेगा। ऐसा एक उनके जीवन का वाक्या मुझे आचार्य महाराज से सुनने मिला था। हम अपने पूर्वाचार्यों को और अगर देखना चाहें तो आने वाली परंपरा में ही देख सकते हैं। जिन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज को नहीं देखा उन्होंने आचार्य वीर सागर जी महाराज में शांति सागर जी महाराज को देख लिया, और जिन्होंने वीर सागर जी महाराज को नहीं देखा उन्होंने आचार्य शिव सागर जी महाराज की छवि में आचार्य वीर सागर जी को देख लिया, और ये परंपरा चलती गई। और आज अगर हम इन सब आचार्यों को एक साथ देखना चाहें तो अपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन में झांक करके देखें तो सारी परंपरा हमें वहां दिखाई पड़ जाती है कि हां सचमुच ऐसे ही महान हमारे सब परंपरा से जो आचार्य हुए हैं वे सब रहे होंगे। मेरा मन आज ये भी था कि हम सब बैठे हैं तो बहुत वर्षों के बाद 1996 के बाद मुझे वो इंदौर का दिन याद आ रहा है जब मेरा ऐसे ही मन बन गया था, और कल शाम से मेरा मन बन गया है और उसी चीज को मैं दोहरा रहा हूं जो 1996 में मैंने इंदौर में लोगों के बीच चर्चा की थी कि एक परिवार जिसमें हम रहते हैं वो कैसे सुंदर बनता है और कैसे हम उसे सुंदर बना सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा परिवार का और क्यों बनाया जाता होगा परिवार। कहते हैं कि जब भोग भूमि समाप्त होती है और कर्म भूमि की शुरुआत होती है तब कुलकर होते हैं। वे कुलकर ये इस बात की शिक्षा देते हैं कि किस तरह एक साथ रहकर एक दूसरे के साथ सद्भाव रखकर और अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि पहले तो माता पिता से युगल के रूप में, पेयर के रूप में उत्पन्न होते हैं और जीवन भर सुखपूर्वक दोनों प्राणी रहे आते हैं। आजीविका की कोई जिम्मेदारी का निर्वाह उनको नहीं करना होता, विवाह की कोई पद्धति या कि सामाजिक दायित्व या कि कोई पारिवारिक दायित्व उस समय तक नहीं होता। कुल कर सिखाते हैं यूथ में रहना, कुल या कि कुटुंब या कि परिवार बनाकर के रहना, कुलम करोति इति कुलंकरा, जो कुल की रचना करते हैं, परिवार की रचना करते हैं और विवाह की पद्धति सिखाते हैं, वे कुलकर कहलाते हैं। ऐसे अंतिम कुलकर नाभि राय और उनके पुत्र भगवान ऋषभदेव, इनके समय से विवाह की पद्धति और परिवार और समाज और उन सबके रहन सहन की पद्धति विकसित हुई है।